बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप का हसास इदारों से तसादुम। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों सहाफ़ती और सियासी हलकों की तवज्जो जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर और कलम नवीस हामिद मीर पर हमले के बाद मुल्क के हसास इदारे और जंग ग्रुप के दरमियान मुबैना तसादुम पर मरकूज़ है। गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ शहरों में जहाँ फ़ौज और ISI की हिमायत में रैलियाँ निकाली गईं, वहीं आवाम ने जियो और जंग ग्रुप की हिमायत में भी जुलूस निकाले और मुजाहरे करके इन पर पाबंदी की मुखालफत का ऐलान किया। इस दरमियान बाज़ हलकों ने जियो और जंग ग्रुप पर गद्दारी का इल्ज़ाम भी लगाया और मुतालबा किया कि इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाए। जंग ग्रुप से वाबस्ता हलकों के मुताबिक जियो और जंग ग्रुप के कारकुनों को संगीन नौइयत की धमकियाँ भी दी गई हैं, जिनको बाज़ हलकों ने आज़ादी सहाफ़त पर हमले और सहाफ़त को महदूद करने नीज़ अपनी ताबे बनाने की कोशिशों से भी ताबीर किया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान ने भी जियो और जंग ग्रुप को संगीन जुर्म का मुर्तकिब करार देते हुए इसके बायकाट का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो जंग ग्रुप और जियो के किसी भी नुमाइंदे को न इंटरव्यू देंगे और न ही इसके किसी सवाल का जवाब देंगे। इमरान खान ने जंग ग्रुप पर गुज़श्ता पार्लियामानी इंतखाबात में धांधली में शरीक होने का भी इल्ज़ाम लगाया है। आज के प्रोग्राम में हम पहले फ़ौज और ISI से जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप के तसादुम के बारे में गुफ्तगू करेंगे और तसादुम की नौइयत जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि क्या इस तसादुम को सहाफ़त और मुल्क के दिफाई इदारे फ़ौज के साथ तसादुम का नाम दिया जा सकता है, और क्या वाकई आज पाकिस्तान में सहाफ़त को कोई ख़तरा लायक है। बाज़ हलकों की जानिब से जियो और जंग ग्रुप पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है, ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश की जाएगी और इस बारे में मुअज़्ज़ज़ तजिया निगारों की राय मालूम करेंगे कि क्या हामिद मीर और जंग ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ISI पर डालकर गद्दारी का इर्तिकाब किया है, और इमरान खान ने जो मौक़िफ जियो और जंग ग्रुप के ताल्लुक से अख्तियार किया है उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
अक्वामे मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को मीडिया के लिए दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क करार दिया है। मीडिया की आज़ादी के आलमी दिन के मौके पर शाये होने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2013 में दुनिया में 71 सहाफ़ी हलाक और 826 को अगवा किया गया या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया के लिए काम करने वालों को ज़्यादा तहफ़ फराहम करने की अपील भी की गई है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में जारी की गई जब पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी और तज़ निगार और मकामी टेलीविज़न चैनल के मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर पर होने वाले नाकाम कातिलाना हमले ने पाकिस्तान की सियासी जमातों और मीडिया को तकसीम करके रख दिया है। हामिद मीर पर उस वक्त हमला किया गया जब वो एक प्रोग्राम की मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद से कराची पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट से निकलते ही उनकी गाड़ी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। पाकिस्तान में एक अरसे से आवाम मुख्तलिफ तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का शिकार हैं। सहाफ़ती तबके के लोगों पर हमले कोई अचंभे की बात नहीं, लेकिन असल तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब हामिद मीर और उनके अदारे जियो न्यूज़ ने मुल्क के खुफिया अदारे ISI पर इस हमले में मुलव्वस होने का इंदिया जाहिर किया। हामिद मीर के भाई आमिर मीर ने इस कातिलाना हमले के फौरन बाद मीडिया को बताया कि उनके भाई ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर उन पर कोई हमला होता है तो उसमें कौन मुलव्वस हो सकता है, और यही इल्ज़ाम फ़ौज, हुकूमत और मीडिया के दरमियान शदीद कशमकश का सबब बन गया। पाकिस्तान की हुकूमत शुरू में कोई वाज़े मौक़िफ अख्तियार न कर सकी और इसके लिए मुश्किल मालूम हो रहा था कि फ़ौज और मीडिया में से किसकी खुलकर हिमायत करे। खुद पाकिस्तानी मीडिया भी इस मामले में तकसीम होता नज़र आया और हामिद मीर पर कातिलाना हमले की मजम्मत तो की, लेकिन मुल्क की सलामती के इदारे पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम के बारे में वो खुलकर कोई मौक़िफ अख्तियार न कर सका। सियासी जमातें भी गोमगो की कैफियत में नज़र आईं। پھر ابہام کے بادل اس وقت چھٹنا شروع ہوئے جب پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور ملک کے اس مقتدر ادارے اور فوج کی خدمات کی زبردست تعریف کی۔ بلوچستان کے دورے میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ان کے ہمراہ دکھائی دیے، جس کے بعد محسوس ہو گیا کہ حکومت نے اپنا وزن بہرحال فوج کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں جہاں میڈیا اور صحافتی برادری کے حق میں مظاہرے ہوئے، وہیں بعض سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے فوج کی حمایت میں مظاہرے شروع کر دیے، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ حالات نے اس وقت دلچسپ رخ اختیار کیا جب پاکستان کے حالیہ انتخابات میں ابھر کر سامنے آنے والی دوسری بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے جیو نیوز پر انتخابات میں دھاندلیوں کے حوالے سے بعض سنگین الزامات لگاتے ہوئے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے الزام عائد کیا کہ حالیہ انتخابات میں دھاندلی کے معاملات میں جنگ گروپ اور جیو نیوز بھی ملوث تھے۔ بہرحال حکومت پاکستان نے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا، جس نے فوری طور پر اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے، جس میں خود حامد میر نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، جس کے مندرجات میڈیا کے ذریعے سامنے نہیں آ پائے۔ دوسری طرف پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کی جانب سے جیو نیوز کو جاری کردہ شوکاز نوٹس کی سماعت کے دوران ادارے کے وکیل نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ حامد میر پر قاتلانہ حملے کے بعد جیو نیوز نے فوج اور اس کے ادارے پر کوئی الزام لگایا ہے۔ جیو اور جنگ کے وکیل اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے کہا کہ 19 اپریل کے جس پروگرام کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک فرد کی رائے ہے۔ جیو نے فوج سمیت کسی ادارے پر کوئی الزام نہیں لگایا، جس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ادارہ اپنے آپ کو حامد میر اور ان کے بھائی کی رائے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے حصہ لیں گے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سی آر شمسی۔ لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں شامل کیا جائے گا بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام کو، اور کراچی سے آج کے پروگرام میں شرکت کریں گے پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین۔ تو چلتے ہیں اسلام آباد، سی آر شمسی صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ شمسی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، اقوام متحدہ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہوگی جس میں پاکستان کو صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ترین ملک کہا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس رپورٹ کے بارے میں؟
9/11 کے بعد جو پاکستان میں صحافت ہے اس کے لیے ایک نیا خطرناک دور شروع ہوا ہے۔ جیسے تو پاکستان میں یا صحافت جو ہے وہ کبھی بھی کسی خوشگوار ماحول میں کام اس کو نہیں کرنے دیا گیا، ہمیشہ پابندیاں اور قانون بنتے ہیں ماضی میں، لیکن اب ایک نئی لہر آئی ہے جس میں جب سے 9/11 ہوا ہے اور
جی شمسی صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور قیصر امام صاحب موجود ہیں۔ قیصر امام صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
قیصر امام صاحب، ابھی ایک تازہ رپورٹ میں جو اقوام متحدہ نے جاری کی ہے، پاکستان کو صحافیوں کے لیے دنیا کا غیر محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے، اس رپورٹ کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، یہ بات بہت حد تک صحیح ہے کہ پاکستان جو ہے یہ صحافیوں کے لیے دنیا کے چند جو بہت زیادہ غیر محفوظ ملک ہیں ان میں شامل ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان محفوظ کس کے لیے ہے؟ اگر آپ ہر روز کی جو خبریں ہیں ان کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پاکستان میں نہ تو کوئی تاجر محفوظ ہے، نہ کوئی دانشور محفوظ ہے، کوئی بھی شخص جو کسی بھی طرح کا وقار رکھتا ہے اور کسی بھی طرح کی اہمیت رکھتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے عوامی سیاستدان ہیں وہ بھی ایک ایک دو دو چار چار نہیں بلکہ درجن درجن بھر اپنے ساتھ ایسے لوگ رکھتے ہیں مسلح جو ان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ پاکستان کے لیڈر جو ہیں وہ عام طور پر بند کمروں میں بیٹھ کے ہی سیاست کرتے ہیں، ان کو باہر آنے کی فرصت کیا، ان کو باہر آنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ہے، لیکن صحافیوں کے لیے وہ زیادہ غیر محفوظ ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ صحافی جو ہیں وہ जब भी कोई खबर देते हैं, जब भी कोई तज्जिया देते हैं, तो वो किसी ना किसी को नागवार गुजरता है, और जिनको नागवार गुजरता है वो लोग ऐसे हैं जो अपना काम जो है वो कर दिखाते हैं। अब तक आपने नोट किया होगा, गुज़श्ता तकरीबन 15 सालों में मेरा ख्याल है कि 150 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, और ये कोई मामूली तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अक़वामे मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें मुकम्मल तौर पर सच्चाई है कि ये पाकिस्तान, ये मुल्क जो है ये सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज मुल्कों में शुमार किया जा सकता है।
जी कैसर इमाम साहब, ये पाकिस्तान में अगर ये मुल्क पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गैर महफूज मुल्कों में शामिल है, तो इस मुल्क को सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज बनाने में किसका किरदार ज़्यादा है इसमें?
अच्छा सवाल है
जी।
जी
फरमाएं।
मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा काम तो हुकूमत ही का होता है, इसलिए कि हुकूमत को ये देखना है कि हर एक चीज़, हर मामला जो है वो कानून के मुताबिक तय किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कानून की हुकूमत नहीं है, कानून को बलाए ताक रखा गया है, और कानून के कई हिस्से हैं। उमरा के लिए अलग कानून है, शुरफा के लिए अलग है, सियासतदानों के लिए अलग है, और जो आम लोग हैं उनके लिए अलग है। सो अगर कानून की अमलदारी हो सही तरीके से तो फिर ये बात, इस किस्म की कोई बात जो है वो सामने नहीं आती। सो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का काम है कि वो कानून को नाफज कर सके सही तरीके से। अगर हुकूमत कानून को सही तरीके से नाफज कर सके तो सहाफ़ी और दूसरी तमाम जो लोग हैं वो महफूज रह सकते हैं। लेकिन असल बात सिर्फ ये है कि हुकूमत में इतनी, एक तो सियासी तौर पर वो इतनी मजबूत अपने आप को समझती नहीं, और दूसरे हुकूमत में इतने मुखलिस लोग नहीं हैं जो कानून की अमलदारी को मुमकिन बना सकें। सो मेरे ख्याल में इसकी जिम्मेदार सबसे पहले तो खुद हुकूमत है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जिम्मेदारी सहाफ़ियों पर भी आती है, उनको चाहिए कि वो अपने लिए ऐसा ज़ाबता अखलाक वज़ा करें जिसमें इस बात की गुंजाइश न रहे कि वो कोई ऐसी एडिटोरियल मिस्टेक करें जिस किस्म की हालिया दिनों में जंग और जियो पर ने की है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की अगर मिस्टेक से बचा जा सके तो ये ऐन अच्छी बात होगी, इसमें फिर खतरात जो हैं वो बड़ी हद तक कम हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सहाफ़ियों का अपना कोई ज़ाबता अखलाक होना चाहिए, और वो हुकूमत ना बनाए, सहाफ़ी लोग खुद बनाएं और उस पर अमल भी करें, जिस तरह से यूरोप के बाद मुल्कों में खासतौर पर बरतानिया में ये बात जो है वो मौजूद है। जी
कैसर इमाम साहब, आपने इशारा किया कि अभी जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, फ़ौज और ISI को बाज़ हल्कों की जानिब से निशाना बनाया गया है, और जंग ग्रुप और फ़ौज के दरमियान जो टकराव की सूरत हाल पैदा हुई है, तो आप क्या समझते हैं इसमें कौन ज़्यादा जिम्मेदार है? इसमें जंग ग्रुप का,
मैं समझता हूं कि एक, जी इसमें मैं समझता हूं कि जंग ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने अभी इशारतन ये बात कही थी कि एक एडिटोरियल मिस्टेक होती है, और एक जानबूझकर इस किस्म का कोई काम करना होता है जिसको हम बाज़ोकात मिस्टेक के पर्दे में ले आते हैं। जंग ने और जंग ग्रुप के लोगों ने, ख़ास तौर पर एंकर पर्सन्स ने, बहुत बड़ी गलती की थी जब उन्होंने एक बड़े इदारे के सरबराह की तस्वीर 8 घंटे तक वो पर्दे पर दिखाते रहे, स्क्रीन पर दिखाते रहे, और ये कहते रहे कि ये वो शख्स है जो ज़िम्मेदार है इस कातलाना हमले का जो हामिद मीर पर किया गया। मैं समझता हूँ कि ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि जब 8 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा तो फिर हुकूमत ने इसका नोटिस नहीं लिया, पैमरा ने इसका नोटिस नहीं लिया जिसको लेना चाहिए था, ये उसकी ड्यूटी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। और उसके बाद अगर फौज ने इस पर ये कहा कि भी इस इदारे को बंद कर देना चाहिए इसलिए कि इसने ये गलती की है, तो हुकूमत ने फिर भी जो काम किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का था। हुकूमत पैमरा ने कोई काम नहीं किया,
जी
बल्कि फौरी तौर पर एक कमीशन बना दिया गया। आपको पता है पाकिस्तान में कमीशन बनाने की एक अपनी तारीख है कि वो कमीशन जो बनाए जाते हैं वो कभी अवाम के सामने उनकी रिपोर्ट नहीं आती और वो नतीजे जो होते हैं उसके वो सब छुपे रहते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने अपने सर से बला टालने के लिए एक अदालती कमीशन बना दिया और ये तय करने के लिए कि ये क्या किया जाए। अब वो कमीशन जो है वो दोनों तरफ से सुनेगा और शायद कोई बेहतर फैसला दे सके, या हो सकता है कि मामला किसी और तरीके से हशहश कर दिया जाए।
जी,
लेकिन
बहुत
मेरे
बहुत
ख्याल में इसकी जिम्मेदार जो है वो जंग ग्रुप है जिसने सबसे पहले ये काम जो है वो गलत तरीके से किया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। सीआर शमसी साहब से राबता हमारा बरकरार हो गया है। सीआर शमसी साहब, पाकिस्तान में फौज और जंग ग्रुप के दरमियान जो इस वक्त टकराव की सूरत हाल है, इसके बारे में हम आपसे बाद में सवाल करेंगे। हम पहले ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज बनाने में किन अनासिर का हाथ है?
जी,
सवाल मेरा यह है कि वो कौन से अनासिर हैं, उसमें ये स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, रियासती अनासिर हैं, गैर रियासती अनासिर हैं, कौन जिम्मेदार है मुल्क को सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज बनने का?
देखिए जी, इसमें बहुत से अहम जो आपने सवाल उठाए हैं।
जी
पहली बात, कत्ल हुआ सहाफियों का और
जी
111 के करीब सहाफी जो हैं
जी
वो मुख्तलिफ वाकयात में मारे जा चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। बदकिस्मती से जो हुकूमतें होती हैं इस बात की जिम्मेदार होती हैं, और ये जितने भी सवाल आपने उठाए हैं, बदकिस्मती से अब तक कोई भी ऐसा मुकदमा जो है बात होती हैं, नतीजा ये हुआ कि ये एक सिलसिला चल पड़ा ऐसा कि मुकदमात कत्ल होते रहे और उनके मुकदमे भी जो है वो भी सर्द खाने की या सर्द मोरी की नजर होते गए। नतीजे में एक नया माहौल बन गया है और इसमें अब किसी की तरफ आप उंगली नहीं उठा सकते कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी की भी एक बहुत ही
जी शमसी साहब से राबते में बदस्तूर मुश्किल नज़र आ रही है। जी कैसर इमाम साहब,
जनाब
जनाब आप ने फरमाया कि इसमें सारी जिम्मेदारी जंग ग्रुप पर आयद होती है, तो क्या जंग ग्रुप ने बराह रास्त फौज और आईएसआई को इसका जिम्मेदार करार दिया है? हामिद मीर पर जो हमला हुआ है जिसके बाद तनाज़ा खड़ा हुआ,
जंग ग्रुप ने बराह रास्त तो ये बात नहीं की
जी,
लेकिन जैसा कि सबको अब मालूम है, हामिद मीर ने इस वाक़े से पहले अपने दोस्तों और अजीज़ों से और अपने बाद साथियों से ये कहा था कि अगर मुझ पर कोई इस किस्म का मामला हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। जंग ग्रुप ने जब इस खबर को रिलीज़ किया तो उसने इसी तरीके से किया कि हामिद मीर ने ये इल्ज़ाम लगाया था और हामिद मीर के भाई ने ये बात साफ साफ कही है कि फौज के फलां फलां लोग जो हैं ये इसके ज़िम्मेदार हैं। अब जब ये उन्होंने इस किस्म का काम किया तो इसको फिर उछालने के लिए उन्होंने एक शख्स की तस्वीर लगा दी आईएसआई के सरबराह की, जो 8 घंटे तक मुसलसल चलती रही टीवी स्क्रीन पर। मैं समझता हूँ कि जो गलती है वो यहाँ है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक था कि हामिद मीर ने क्या कहा था, अगर वो 1-2 लाइनों में बता दिया जाता खबर के तौर पर तो वो ठीक था, लेकिन अगर 8 घंटे तक आप मुसलसल ये बात कहते रहें कि आईएसआई का सरबराह जो है वो इस किस्म का काम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक एडिटोरियल मिस्टेक थी, गलती थी जो नहीं होनी चाहिए थी। सो इस मामले को हवा दी सबसे पहले इस एक मामले ने, और उसके बाद फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फौरन पार्टी बन जाते हैं या उसके खिलाफ या उसके हमायत में
जी।
और जब फौज की तरफ से ये कहा गया, जब हुकूमत ने कोई काम नहीं किया इसके मामले में, पैमराम ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो फौज को खुद इस बात में कहना पड़ा और उसने वजारत दिफा को ये चिट्ठी लिख दी कि जी इस अदारे को बंद किया जाए। अब जब ये बात यहाँ तक पहुँच गई तो मुल्क में जाहिर है कि फिर पार्टीबाजी शुरू होगी। लोगों ने फौज की हिमायत में और कुछ ने जंग की हिमायत में बहुत से, मैं समझता हूँ कि मुजाहरे किए हैं, जिनके मुतल्लिक अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये दोनों ना फौज के लिए बेहतर हैं ना जंग ग्रुप के लिए बेहतर हैं। होना ये चाहिए कि जंग ग्रुप ने जो कुछ भी गलती की है उसको बंद ना किया जाए, बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको भारी जुर्माना करना चाहिए और ये बात तय कर देनी चाहिए पैमरा को भी कि अगर इस किस्म का कोई काम आइंदा होता है तो वो उसका क्या एक्शन लेगी। ये बातें सारी क्लीनली क्लियरली वाजे होनी चाहिए सब लोगों पर कि अगर ये बात हो तो क्या हो सकता है, उसके अवामल ये क्या हो सकते हैं, नतायज क्या हो सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये जो ख्याल है कि इस इदारे को बंद कर दिया जाए ये मुनासिब नहीं है, कभी भी इस किस्म का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको सज़ा ज़रूर देनी चाहिए जो मिस्टेक उसने, जो मिस्टेक नहीं थी बल्कि जानबूझ कर ये गलती की गई थी। सो मेरे ख्याल में इसका जिम्मेदार बुनियादी तौर पर जंग ग्रुप है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार आगा मसूद हुसैन साहब से भी हमारा राबता बरकरार हुआ है जो कराची में है। आगा मसूद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जनाब। फौज और आईएसआई के साथ जंग ग्रुप के दरमियान टकराव की जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इस वक्त किस मरहले में है? मामला सुलझ रहा है या उलझ रहा है?
देखिए, जो सूरत हाल पाकिस्तान में सहाफत के पस मंज़र में आई है वो उसमें जनाब इमाम साहब का जो तज्जिया है वो ज़्यादा मुनासिब और वज़नी तज्जिया है। बात दरअसल ये है कि जंग और जियो ग्रुप जो है एक अरसे से पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर तनकीद कर रहा था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी तनकीद की, कोई बुनियाद नहीं थी, तो लेकिन इसके बाद भी उनको बर्दाश्त किया जा रहा था
जी।
लेकिन बाद में जब ये हामिद मीर पर हमला हुआ तो जिसकी मेरा ख्याल है सब ने मजम्मत की कि साफियों पर हमला नहीं होना चाहिए, हामिद मीर पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जियो ने 8 घंटे तक आईएसआई के सरबराह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई और उससे लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि ये जो कुछ भी हुआ है ये आईएसआई की तरफ से हुआ है, हालांकि आपको मालूम है कि सहाफत में इल्ज़ाम की बुनियाद पर ना तो खबर बनती है ना इल्ज़ाम की बुनियाद पर तजिया होता है। तो चुनाचे जब ये हुआ तो उसमें आवाम को बहुत ही गम गुस्सा हुआ और आवाम ने इनकी बड़ी शदीद मजम्मत की। और आपको मालूम है कि जंग ने एक सिलसिला भी शुरू कर रखा है जिसका नाम है अमन की आशा। अमन की आशा के सिलसिले में भी पाकिस्तान के अस्करी इदारों के तहफात थे और वो नहीं चाह रहे थे कि अमन की आशा की बुनियाद पर पाकिस्तान जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मारेज वजूद में आया है उसकी नफ़ी की जाए, जबकि जंग ग्रुप के बारे में मुबैना तौर पर यह कहा गया है कि इन्होंने हिंदुस्तान से और टाइम्स ऑफ इंडिया से कई अरब रुपए लेकर ये सिलसिला शुरू किया है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो इतने कमज़ोर तो नहीं है। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर जो है बड़े मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, तो ये भी इन पर इल्ज़ाम था, लेकिन ये सब टॉलरेट किया जा रहा था, बर्दाश्त किया जा रहा था। लेकिन जब ये हमला हुआ तो मीर हामिद का भाई मीर आमिर, जिसकी कोई हैसियत नहीं है सहाफत में, और उसने जाके एक इल्ज़ाम लगाना शुरू किया और 8 घंटे तक ये स्क्रीन पर उनकी तस्वीर आई आईएसआई के सरबराह की, ये जानबूझकर ये काम हुआ था। एजेंट प्रोवोकेटियर कुछ लोग होते हैं, एजेंट प्रोवोकेटियर, तो इन्होंने एजेंट प्रोवोकेटर का किरदार अदा किया और इसके बाद ये कि मेलाइन करने की कोशिश की और इसी बुनियाद पर पूरी साफ़ित बिरादरी जो है दो हिस्सों में तकसीम हो गई। हालांकि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि अगर पाकिस्तान के आइन का अगर आप मुताला करें तो आइन के आर्टिकल नंबर 19 में बड़ी वजाहत से लिखा है कि आपको गुफ्तगू की आज़ादी है, आपको लिखने की आज़ादी है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि आपको अपने कौमी मफादात का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि कौमी मफादात का कोई ख्याल नहीं रखता और जो जिसकी मर्जी आती है वो गुफ्तगू करता है। एक और बात मैं आपकी खिदमत में मेहदी साहब अर्ज करना चाहता हूँ कि कायद अजम मोहम्मद अली जना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनके ये अल्फाज मैं आपको की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, कोट अनकोट, वो अल्फाज ये हैं कि यू आर फ्री इन पाकिस्तान, यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन इवन क्रिटिसाइज द मुस्लिम लीग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यू कैन क्रिटिसाइज मुस्लिम लीग बट यू हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज़ें आप मुझे बताइए, पाकिस्तान का कौन सा साफ़ी है कि जो आर्टिकल 19 और कायदे आज़म के फरमूदात के तहत काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, एक फ्री फॉर ऑल है। और इमाम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई प्रेस काउंसिल मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर किसी का एहतसाब किया जाए। तो यहाँ पर एक मतलब एक भेड़ चाल है जिसका जो चीज आए वो, और सहाफत में टॉलरेंस खत्म हो गया। ये मैं आप किसी भी सीनियर सहाफी से पाकिस्तान में पूछ लें कि कोई टॉलरेंस नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज यही सूरत हाल अदम बर्दाश्त की ये है कि पूरी सहाफी बिरादरी जो है वो तकसीम हो गई है। और आप टीवी पर देखिए किस किस्म के अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वो जो मीर हामिद पर हमला था उसकी मजम्मत जो नॉन स्टेट एक्टर ने की या कोई भी दहशतगर्दी तंजीम ने की वो तो एक तरफ हो गया। अब सब ये है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम जो लगा जा रहे हैं ये कोई मुनासिब नहीं है। इसमें इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान का माशरा वैसे भी टूट फूट का शिकार है, लेकिन जब लिखने वाले, सोचने वाले, ओपिनियन बनाने वाले जब खुद ही तकसीम हो जाए तो आप मुझे बताइए कि इस माशरे का क्या होगा। आज ये सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश है और कोई भी सहाफी तंजीम इस बात के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है कि हमें एक ऐसा एहतसाब का एक इदारा बनाना चाहिए कि जिस पर पाबंदी हो और आर्टिकल 19 को सामने रख के बात की जाए। कायद अजम रहमतुल्ला अलैह के फरमूदात के सामने वो एहतसाब काउंसिल बननी चाहिए, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से सहाफियों की कोई तरबियत नहीं है और जो मालकान हैं वो कोई भी सहाफियों को तरबियत देने के लिए तैयार नहीं है। ना वो पैसे खर्च करते हैं, ना इस सिलसिले में उनको कोई उनसे दिलचस्पी है। तो जब ये इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए कि जहाँ पे कोई तरबियत का इंतजाम ना हो, जहाँ लोगों के पास इथिक्स ना हो कि भाई इथिक्स भी तो कोई चीज़ होती है सहाफत में, तो जाहिर है कि आप देखें कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो होगा। और फिर इसमें खुफिया इदारे बेचारे क्या करें? खुफिया इदारों का तो काम बुनियादी तौर पर यह होता है कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करें, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई समाज दुश्मन अनासर है उस पर भी निगाह रखें। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी बिल्कुल उनका ये किस्म का जायज़ काम है कि अगर कोई शख्स जो है वो हदूद पार कर रहा है पाकिस्तान के नज़रियात से, पाकिस्तान के कौमी मफाद से, तो उसकी भी मतलब ये कि पासपोर्ट होने चाहिए। आप अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी इदारा कैसे वजूद में आया 9/11 के बाद? आप वहाँ पर चल कर देख लें किसी वीरान सड़क पर फ़ौरन पुलिस आएगी और आपसे पूछेगी आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स पूछगछ करता है या पाबंदी लगाता है तो पाकिस्तान बदनाम होता है, लेकिन वही बड़े बड़े महजब ममालिक के जहाँ पर जमहूरियत ने जड़ पकड़ रखी वहाँ पर भी मतलब लोगों से इस किस्म के सवाल किए जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बात असल ये है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत को जो आज़ादी मिली है 10-11 साल से वो अभी तक मेच्योर नहीं हो सकी, उनको आज़ादी हजम नहीं हो रही है। और वो जो चाहे मतलब ये कि गुफ्तगू कर रहे हैं, आप टॉक शोज में देखिए, अगर आप टॉक शोज पाकिस्तान के देख लें तो आपका जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आप कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इन टॉक शो को ना देखें। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें जंग और जियो ग्रुप ने जो तरीके इख्तियार किया था वो एजेंट प्रोवोकेटियर का था। दे वॉन्टेड टू मेलाइन पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन और यही वजह थी कि आवाम निकल आए। और जो अभी आपने मेहंदी साहब आपने जो बात फरमाई है जियो के हक में जो लोग निकले हैं वो जियो के मुलाजिम हैं, क्योंकि 5-6 हजार तो उनके मुलाजिम हैं। इनके हक में जो आवाम का जो रद्द अमल था वो सवाए मजम्मत के और कुछ नहीं। तो मैं बड़ी वसूख से आपको बता रहा हूँ, मैंने 22 साल जंग के अंदर कॉलम लिखे हैं। अभी हाल ही में मैंने वहां से कॉलम लिखना दुनिया में मैं शामिल हो गया हूँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पर सिर्फ उनके मुलाजिम निकले थे और उन्होंने उनकी हिमायत की, लेकिन अब उनके हक में कोई बोलने वाला नहीं है। फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि जो भी हामिद मीर के भाई आमिर मीर ने बात की हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। यानी 8 घंटे तक जो शख्स वहां बैठा हुआ था, एंकर था या एडिटोरियल पेज का इंचार्ज था, उसको बाकायदा ये हिदायतें मिली थी कि यू हैव टू शो द मैन ऑन द स्क्रीन। तो आप तो हिंदुस्तान के लोगों का जो है ना, हिंदुस्तान की हुकूमत का एजेंडा पूरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को जो है बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के ISI को बदनाम किया जाए। मुझे आप बताइए कि दिल्ली के अंदर, मैं आपसे बताऊं, मैं हिंदुस्तान जाता रहता हूं, दिल्ली जो है ना हिंदुस्तान का वाहिद दारुल खिलाफा है जहां पे सबसे ज्यादा रेप केस होते हैं, लेकिन किसी अखबार ने नहीं कहा कि ये रेप जो है वो रा के लोग करते हैं। ये तो पाकिस्तान में जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में एक बेहुदा आजादी मिली हुई है जिस आजादी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो जहां पाबंदी नहीं होगी, जहां पर एहतसाब नहीं होगा, जहां पर साफियों का भी एहतसाब नहीं होगा, जहां प्रेस काउंसिल नहीं होगी, तो आप जो अंजाम देख रहे हैं आप देखिएगा। और ये तसादुम जो अखबार नवीसों के माबेन हो गया है इसको बहुत आसानी से पार्ट नहीं किया सकता, इसमें बड़ा वक्त लगेगा और मेच्योर लोगों को आना पड़ेगा। और उसमें मैं समझता हूँ अगर रिटायर्ड जजेस बैठ के इस पर सोचें तो बहुत कुछ तब्दील हो सकती है, वरना यह है कि ये जो जिस किस्म का घमासान का रन पड़ा है साफियों के माबेन ये जारी रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और शमसी साहब से टेलीफोन पर रابطہ कायम किया गया है। जी शमसी साहब, जनाब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है कि मुल्क के दिफाई और सलामती के इदारे और जंग ग्रुप के दरमियान जो तसादुम की सूरत हाल है, क्या इन दोनों इदारों में यानी जंग ग्रुप में और मुल्क के दिफाई और सलामती के इदारे में पहले से कुछ शकरंजी पाई जाती थी?
मैं समझता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है
जी
इसको एक गैर जरूरी तौर पर जिस तरह एक इशू बनाया गया है और
जी
इसमें जो अभी बात हुई है, हमें हम समझते हैं कि एक साहसी स्थिति और थोड़ी सी हमें यहाँ तफरीक रखना होगी कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो अलग चीज है और जो मीडिया हाउसेस के मालकान है वो अलग चीज है। मीडिया हाउसेस जो पॉलिसियां बनाते हैं वो मीडिया हाउसेस के मालकान बनाते हैं
जी।
और बदकिस्मती से अभी तक इस वाक्य को 15-16 दिन हो चुके हैं, जो इस स्थानक मीडिया की एसोसिएशन है ब्रॉडकास्टिंग की, उसका एक इजलास तक नहीं हो सका। होना ये चाहिए था कि इस सारे वाक्यों को वो तंजीम जो है जिसके तमाम मीडिया 80 के करीब चैनल उसके मेंबर हैं वहां बुलाया जाता और जो इस वक्त जो अदालती एक बहुत मिस हैप हुआ है। और मैं बिल्कुल यकीनन इसमें दो पहलू है, जो हामिद मीर पर हमला हुआ है सहाफत पर, किसी सहाफी पर जो हमला है वो काबिल मजम्मत है, लेकिन जिस तरह इस वाक्य को जियो ने उस वक्त उजागर किया और उसको एक बगैर तस्दीक के और बगैर अभी तहकीकात के जिस तरह उसको सामने लाएगा, इस पर यकीनन जो रियासती अदारे हैं हमारे वो इस पे उनका जो गुस्सा था या नाराजगी थी वो बजा थी। लेकिन उसके बाद भी जो मैं देखता हूँ जो मामला हुए हैं, जो कैमरा में दरखास्त की है, और कैमरा इस वक्त जो है वो एक अदारा है जो कंट्रोल करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस अदारे की अफादियत जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस अदारे के पास वो ना उसका मेंबर वो पूरा ये उसका जो ढांचा है वो पूरा है, ना उसके पास कुछ इस तरह के इख्तियार है, ना ही वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको मीडिया से मुतल्लिक कोई सूझबूझ होती है, वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। और उसका पहला जो सरबराह बनाया गया था वो पुलिस ऑफिसर एक रिटायर्ड थे, तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो मामला हो रहा है सहाफी के नजदीक पाकिस्तान के तमाम जो अदारे हैं वो काबिल एहतराम है, और सहाफी जो होता है उसमें एक इतलात जो है वो अवाम तक पहुँचानी होती है। लेकिन इन हालात में अब ये जरूरी हो गया है कि जो प्रोफेशनल एडिटर होते थे वो अदारों में मौजूद नहीं है, क्योंकि अदारों के जो मालकान हैं वो खुद ही मालिक हैं और खुद ही एडिटर हैं, खुद ही पॉलिसी देते हैं, लेकिन निशाना जो बनते हैं वो वर्किंग जर्नलिस्ट बनते हैं। इस मुल्क में जो आजादी सहाफत है ये ध्यान में रखना होगा हमें कि वो इस मुल्क के आमल सहाफियों ने और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो एक निसफ सदी पर मुहित तंजीम है उसने बहुत जद्दोजहद के बाद सहाफत हासिल, लेकिन आजादी का मतलब ये समझते हैं कि इस लमहे में ये जो इश्यूज को जो चैनल्स हैं जो मीडिया हाउसेज हैं उनके आपस के इख्तलाफात के नतीजे में एक जो इसको उभारा जा रहा है और इसको मजीद वसत दी जा रही है, ये हम समझते हैं कि हजारों के लिए मुनासिब नहीं है और इससे खराबियां पैदा होंगी। जरूरत इस बात की है कि जो हुकूमत है वो इस सूरत हाल का नोटिस ले और जो जो जिम्मेदार हैं इस सारे वाक्य के, और जो अब कमीशन बना है बड़ा 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन है, उसकी समाउस पर छोड़ दिया जाए और जो हकायक है वो चुनावों पर डिस्कस करने के बजाय वहां सामने रखे जाए, ताकि एक दुनिया भर में जो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान के अदारे बदनाम हो रहे हैं, इससे निकला जा सके। और साथ साथ ये वक्त आ गया है कि जो डेमोक्रेटिक हुकूमत है उसको कैमरा जो है इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाया जाए और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्टर देते हुए पार्लियामेंट के मुताबिक किया जाए, ताकि किसी को इस पे एतराज ना हो सके और ये जो फैसले करे वो मुनसफाना हो। मैं एक सहाफी की हैसियत से समझता हूँ कि सहाफी ना थानेदार होता है ना वो जज होता है, उसको फरीक नहीं बनना चाहिए किसी मामले में, जो मालूमात है जो इतलात है जो खबर है वो आवाम तक तो पहुँचानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक चैनल आए हैं ये जिस तरह हमारी जमहूरियत इरतकाई मराल से गुजर रही है, ये हमारे चैनल भी इस वक्त इरतकाई मराल से गुजर रहे हैं, और यहाँ नॉन जर्नलिस्ट जो है बाज नॉन जर्नलिस्ट मैं कहूँगा कि जो एंकर बन चुके हैं जिनको पता नहीं लफ्ज की अहमियत क्या होती है और लिखे हुए लफ्ज की क्या अहमियत होती है, क्योंकि जब आप बोल देते हैं वो लफ्ज आपके नहीं रहते, तो तो ये वो अनासर है या वो लोग हैं जिन्होंने सारे माहौल को बदला किया है। इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान में एक साहसी की हैसियत से, जो असल इश्यूज हैं लोगों के, करोड़ों लोगों के मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तवज्जो उससे हटी हुई है। तो ये हुकूमत को या जो अदारे इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं, इनको ठहराव का मुजाहरा करना चाहिए, तदब्बर से इस सूरत हाल से निकलना चाहिए और जो अदारे हैं उनको मजबूत बनाना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
इख्लाक जो है वो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ वो जाब्ता इख्लाक या प्रेस काउंसिल जो है इस वक्त की है, लेकिन वो भी हुकूमत के मतात होती है, कैमरा भी हुकूमत के मतात होता है। तो इस तरह के अदारे जो है वो एक मुनसफाना अपनी राय देने के अहल नहीं होते। जहां तक पाकिस्तान की जो सहाफती तंजीम है, पाकिस्तान ट्रिब्यून यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसने ऑफर की है तमाम अदारों को।
बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। कैसर इमाम साहब, जनाब तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने जो मौकफ अख्तियार किया है जियो और जंग ग्रुप के सिलसिले में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दो मिनट का वक्त हमारे पास।
मैं समझता हूं कि इमरान खान अगर अपने मौकफ पर बिल्कुल सही भी हों तो भी उसके लिए ये सही मौका नहीं था। उन्होंने जब ये देखा कि जंग और जियो ग्रुप पर किसी और वजह से मुख्तलिफ किस्म के हमले हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अपने तौर पर ये भी अपना एक काम अपना निपटा लें। सो मेरे ख्याल में ये उन्होंने गलत मौके पर ये सब कुछ किया है, खा वो अपने मौकफ पर कितने भी सही हों। मेरा ख्याल ये है कि उनको इससे एतराज़ करना चाहिए था और सहाफती इदारों के साथ किसी किस्म की मुखासमत या किसी किस्म की इस किस्म की ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती ये सियासतदानों के लिए ठीक नहीं है और ना ही ये कौम के लिए, मुल्क के लिए ठीक है। खुद जंग के लिए और जंग ग्रुप के लिए भी ये ठीक नहीं है, इसलिए कि जब से उस अपने इमरान खान ने इस किस्म की शुरुआत की है तो जंग भी जवाबी तौर पर उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चला रहा है। तो ये चीज़ जो है ये ना जंग ग्रुप के लिए अच्छी है, ना इमरान खान के लिए और ना हमारी कौम के लिए ये सही है। मेरे ख्याल में इन बातों से अगर एतराज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एक दूसरे को मौरद इल्ज़ाम ठहराएं, मामलात को अदालतों में पेश करके वहाँ से वाज़े फैसले लिए जाएं। लेकिन हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि अदालतों को इस हद तक मुख्तार और इस हद तक सही मानों में काम के लायक बनाए कि वो फैसले जल्दी दे सकें, न कि जिस तरह से इमरान खान के साथ हुआ है कि साल भर में उसकी शिकायतों का अभी तक कोई समाप्त भी नहीं हो सकी। सो मेरे ख्याल में इस मामले में भी हुकूमत को वो इकदाम करने चाहिए जिनकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगा मसूद हुसैन साहब, जनाब हमारे पास 3 मिनट का वक्त है, आप क्या कहेंगे? इमरान खान ने जो जंग और जियो ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाया है इंतखाबात में धांधली में शरीक होने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, इमरान खान साहब ने जो जंग और जियो ग्रुप पे इल्ज़ाम लगाया है इसका एक बड़ा पसमंज़र है। पसमंज़र ये है कि जैसे कि लोग कहते हैं और बाज़ कराची के मुमताज़ साफियों का भी ये ख्याल है कि जंग ग्रुप ने बाकायदा नवाज शरीफ साहब से मिल के जो इंतखाबात हुए थे 13 मई को, उसको बाकायदा आवाम को मुतासर करने की कोशिश की गई थी और वो कोशिश की गई थी कि इमरान खान जो कि हर मायनों में मतलब ये कि इंतखाबात जीत रहे थे तो उनको आवाम के मतलब प्रिंट मीडिया यानी जंग ग्रुप की तरफ से कुछ इस किस्म के इशारे मिले कि वो इंतखाबात नहीं जीत सकते। तो मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान साहब ने जो जंग और जियो के ख़िलाफ़ जो कदम उठाया है उसका एक बड़ा मजबूत पस मंज़र है और जिस पस मंज़र की तरफ मैंने इशारा किया हुआ लोग बाकायदा ये कहते हैं कि जंग ग्रुप अपनी आज़ादारी मुसलत करना चाहता है नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मिलके ये एक ट्रियो था जो कब्ज़ा करना चाहता था। और किसी हद तक आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब तो कामयाब हो गए, इफ्तिखार चौधरी साहब को शायद ये उम्मीद थी कि उनको सदर बनाया जाएगा क्योंकि उन्होंने बड़ी कासा लैसी की थी, हुकूमत की बड़ी कासा लैसी की थी नवाज शरीफ साहब की, तो वो कासा लैसी उनके काब नहीं आ सकी। अब इमरान खान साहब जो हैं वो आपको मालूम है 11 मई को वो सामने आ रहे हैं और जंग और जियो जो है उनके खिलाफ जिस तरीके से इमाम साहब ने फरमाया कि जंग और जियो के खिलाफ जिस किस्म की वो इमरान खान साहब के खिलाफ चल रही है मुखालफत में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, सारी दुनिया जानती थी कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीत रहे हैं, ही वॉज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन को टेम्पर किया गया, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि जिस ग्रुप ने, जिस अखबारी ग्रुप ने, जंग जियो ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की, ये हुकूमत से मिल के, नवाज शरीफ साहब से मिल के, इफ्तिखार चौधरी के साथ मिल के, तो अब ये उनका वक्त आ गया है कि वो जो है ना, ही विल रिटर्न दीज पीपल इन द सेम क्वाइन। तो मैं समझता हूँ उनका ये जो स्टैंड है बिल्कुल जायज़ स्टैंड है। उनको उनको जानबूझकर पाकिस्तान के इंतखाबात में हराया गया, वो पाकिस्तान के नौजवानों की उम्मीद थे, किरण थे, वो बुनियादी तौर पर एक विजनरी आदमी हैं, और विजनरी आदमी को पाकिस्तान में आना चाहिए, और जब तक के पाकिस्तान के अंदर विजनरी लोग नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आएंगे जिनको खौफ खुदा है, तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकेगी। स्टेटस को की सियासत रहेगी, और इमरान खान साहब इसी स्टेटस को की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसने आवाम को जकड़ रखा है, जिसमें सहाफत को जकड़ रखा है, जिसमें मासूम लोगों को कत्ल किया जाता है, और कातिल जो है वो दंदनाते सड़कों में फिर रहे हैं, उनका कोई बासपूस करने वाला नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब, और इसी के साथ हम सीआर शमसी और डॉक्टर कैसर इमाम के भी शुक्रगुजार हैं। तीनों तजिया निगारों के ख्याल आपने मुलाहिजा फरमाए। बहरहाल, जियो और जंग ग्रुप और फौज के दरमियान तसादुम ने तश्वीश की सूरत हाल पैदा ही की थी कि इस दरमियान इमरान खां भी बीच में आ गए, और अगरचे उन्होंने फौज से मुतालबा किया है कि जंग और जियो ग्रुप फौज से माफ़ी मांगे, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा उस वक्त तक वो इसका बायकॉट जारी रखेंगे, इसी के साथ उन्होंने इंतखाबात में धांधली में शरीक रहने का भी इल्ज़ाम लगाया है। बहरहाल, प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।